7 नवंबर दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की नोटबंदी की नीति पर किया कड़ा प्रहार। वित्त मंत्री जेटली ने संवाददाता सम्मेलन कर किया इसका बचाव।
हैरानगी तो तब है जब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्सरसाइज जिसके पीछे एक एथिकल रैशनल है, मॉरल रैशनल है, उसको लूट कहना।
बिहार में नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र में भी किया आरक्षण का समर्थन। बताएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किस तरह बदल रही है टोपी अपना रंग।
हम तो इसे समझते थे कि हम हिमाचली हैं, हम हिमाचली टोपी पहनते हैं, लेकिन एक बार ही राजा साहब ने इसका निरादर किया तो कि मुझे क्यों दी मेहरून टोपी, मुझे हरी टोपी चाहिए थी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। भारत में नोटबंदी को एक साल पूरा होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को पूरी तरह विफल बताया है, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि इससे देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा है। तेहरान की जेल में बंद ब्रिटिश ईरानी मूल की महिला नाज़नीन ज़ाग़री रेडक्लिफ पर ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन की टिप्पणी को लेकर उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने सफाई देकर कहा है कि जॉनसन को बयान में अधिक स्पष्ट होना चाहिए था। वहीं विपक्ष ने जॉनसन की आलोचना की है। जॉनसन ने पिछले हफ्ते कहा था कि नाज़नीन ट्रेनिंग जर्नलिस्ट थी। सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में नाज़नीन को 5 साल की सजा मिली है, लेकिन जॉनसन के बयान के बाद उन पर वापस दूसरे आरोप लगाए गए। मुझे लगता है कि हमारे विदेश सचिव द्वारा ऐसा कहना अस्वीकार्य है। एक शीर्ष कूटनीतिज्ञ के पास इतनी महत्वपूर्ण स्थिति पर कम जानकारी है। मैं असली मुद्दे को इस ओर ला रही हूँ। ये थे विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक के शब्द। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से उत्तर कोरिया के साथ व्यापार को बंद करने की मांग की है। एशिया दौरे के दौरान दक्षिण कोरिया पहुंचे ट्रंप ने अपने समकक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक खतरनाक देश की आर्थिक तौर पर मदद करना मंजूर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें आशा है उत्तर कोरिया किसी सौदे के लिए राजी हो सकता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की मांग की है। परिषद ने कहा है कि बांग्लादेश भाग कर गए हजारों रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस लिया जाए। पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत फ्रांसवा डेलेटा ने कहा कि म्यांमार के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए। अध्यक्ष के बयान के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षा परिषद ने खास लोगों को मारने की हरकत के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखाया है। यह जरूरी है कि हमारे समय के सबसे बड़े मानवीय संकट को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। ये थे फ्रांस के राजदूत फ्रांसवा डेलेटा के शब्द। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के मैडागुरी शहर में 4 आत्मघाती महिला हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। अब तक ये रिपोर्ट है कि केवल हमलावर ही मारे गए हैं और कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह वह शहर है जहां पर चरमपंथी संगठन बोको हराम की स्थापना हुई थी। पड़ोसी राज्य अदामावा में कथित चरमपंथियों ने आधी रात को गुलक में हमला किया था, जिसके बाद सैकड़ों लोगों को शहर छोड़ना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं से आग्रह किया है कि वह यमन की नाकेबंदी को बंद करें। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन की हवाई, जमीनी और समुद्री सेना को बंद करने से मदद में रुकावट आई है। एक प्रवक्ता जेंस लेरका ने कहा कि इस कार्रवाई से 70 लाख लोगों में डर है जो पहले से ही अकाल जैसी स्थिति से निपट रहे हैं। नए गवर्नर चुनने के लिए अमेरिका के वर्जीनिया और न्यू जर्सी में मतदान जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इन राज्यों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट उम्मीदवार टेरी मैकॉलिफ और रिपब्लिकन उम्मीदवार एड गिलेप्सी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हिब्रू भाषा की ऐतिहासिक किताबों पर एक सदी पुराने विवाद को समाप्त करने पर इसराइल और रूस की सरकारी लाइब्रेरियों के बीच सहमति बन गई है। ग्वेंसबर्ग के संग्रह में धर्म, दर्शन और अन्य विषयों पर कम से कम 14,000 कृतियां हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार कर गए रेहान फदल का। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार के दो प्रमुख आर्थिक सुधारों नोटबंदी और जीएसटी पर जमकर हमला बोला है। नोटबंदी के एक साल पूरा होने से एक दिन पहले मनमोहन सिंह ने अहमदाबाद में कहा कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन किया जाना एक संगठित लूट और कानूनी डाका थी।
With immense pain and a sense of deep responsibility that the 8th of November
मैं बहुत दुख और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पिछले साल 8 नवंबर हमारी अर्थव्यवस्था और प्रजातंत्र के लिए सबसे काला दिन था। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी तो मुझे बहुत धक्का लगा था और मुझे ताज्जुब हुआ था कि किसने उन्हें देश के बारे में इस तरह का बिना सोचे समझे कदम उठाने की सलाह दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शब्द। मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी का जो मकसद बताया वो पूरा नहीं हुआ, काले धन वालों को पकड़ा नहीं जा सका, वे लोग भाग गए। उधर नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए जेटली ने नोटबंदी से हुए फायदों के बारे में बताया और नोटबंदी को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं का जवाब भी दिया। जेटली ने कहा कि ज्यादा कैश से भ्रष्टाचार होता है, ऐसा नहीं है कि नोटबंदी से सारी परेशानी एकदम हल हो जाएगी, लेकिन नोटबंदी ने एक एजेंडा जरूर बदला।
10 वर्ष तक एक पॉलिसी पैरालिसिस, कुछ न करना, ऐसी हुकूमत चलाना, और प्रधानमंत्री जी ने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक के बाद एक करके बदलाव लाने का प्रयास किया है। यूपीए और एनडीए में एक तरफ पॉलिसी पैरालिसिस, एक तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और हैरानगी तो तब है जब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्सरसाइज जिसके पीछे एक एथिकल रैशनल है, एक मॉरल रैशनल है, उसको लूट कहना। एन एंटी ब्लैक मनी ड्राइव इज एन एथिकल ड्राइव, एन एंटी ब्लैक मनी स्टेप इज अ मॉरल स्टेप। व्हाट इज मॉरली एंड एथिकली करेक्ट हैज टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। लूट तो वो होती है जो 2G में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई, जो कोल ब्लॉक के एलोकेशंस में हुई।
वित्त मंत्री अरुण जेटली। कल नोटबंदी लागू हुए पूरा एक साल हो जाएगा और इस अवसर पर हम आपको सुनवाएंगे विशेष रिपोर्ट। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी एशिया यात्रा के दूसरे चरण में दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वो उत्तरी कोरिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लें ताकि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोल में कहा कि दुनिया के देशों को एक खतरनाक राष्ट्र की मदद नहीं करनी चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा विवरण सुनिए पायल भुइया से।
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की उत्तर कोरिया पर बनाई गई नीतियों का असर दिखने लगा है। ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।
I really believe that it makes sense for North Korea to come to the table.
मैं ये मानता हूँ कि उत्तर कोरिया को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। ये सिर्फ उत्तर कोरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। मुझे चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है।
ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। हालांकि अमरीका का बड़ा सैन्य बल इस क्षेत्र में पहले से ही तैनात है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वो आशा करते हैं कि इसका इस्तेमाल उन्हें उत्तर कोरिया के खिलाफ कभी न करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने चीन और रूस को भी प्योंगयांग पर दबाव बनाने का आग्रह किया है। सियोल में मून जे इन के साथ प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से उत्तर कोरिया के साथ व्यावसायिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की अपील की, जिसके जरिए उत्तर कोरिया को उसके हथियार कार्यक्रम खत्म करने पर मजबूर किया जा सके।
UN Security Council regulations.
सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों को लागू करना चाहिए और उत्तर कोरिया के साथ पूरी तरह से व्यापार और व्यवसायिक संबंध समाप्त कर देने चाहिए। यह अस्वीकार्य है कि कोई देश ऐसे खतरनाक मुल्क को उसके खतरनाक मिशन के लिए वित्तीय मदद करे।
ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक दक्षिण कोरिया अमेरिका से अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता वित्त घाटा कम किया जा सके। इससे पहले ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में जापान के साथ होने वाले सैन्य समझौतों की बात भी कही थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जापान भी अमरीकी उपकरणों से प्योंगयांग को उड़ा देने की क्षमता रखता है। ट्रंप की ये यात्रा दोनों देशों के बीच सैन्य गठबंधन को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले सप्ताह में चीन, वियतनाम और फिलीपींस जाएंगे।
राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा और अब फ्रीक्वेंसी बदलाव की सूचना।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित नारायणपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया गया है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और दूसरी सामग्री बरामद की गई है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बस्तर में सोमवार से माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन प्रहार नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को अबूझ माड़ के इलाके में मुठभेड़ की 2 घटनाएं हुई, जिसमें 6 माओवादी मारे गए हैं। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार, हथियार बनाने की सामग्री, प्रिंटर, माओवादी साहित्य, वर्दी जैसी सामग्री भी बरामद की है। राज्य में नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में ऑपरेशन प्रहार नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
करीब 2000 के ऊपर उसमें सुरक्षा बल थे। आईजी जगदलपुर इस पे पूरी नजर रखे हुए थे और सारे पुलिस अधीक्षक हमारे इसमें लगे हुए थे। आज की जो सफलता है वो पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के निर्देशन में जो फोर्स 450 का नारायणपुर का गया था, उसने अबूझ माड़ इलाके में ये सफलता प्राप्त की है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सभी जगह चल रहा है, तो कुछ और सफलताएं मिलने की उम्मीद है।
माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के 2000 जवानों का ऑपरेशन प्रहार अभी जारी रहेगा और पुलिस अफसरों की माने तो उनकी रणनीति यही है कि बिना किसी नुकसान के माओवादियों के कब्जा वाले इलाके में घुसकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है कि आरक्षण सरकारी ही नहीं निजी क्षेत्र में भी दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस कराए जाने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पर बिहार के दूसरे राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र के लोग और आम लोग क्या सोचते हैं, बता रहे हैं पटना से मनीष शांडिल्य इस रिपोर्ट में।
बिहार सरकार के विभागों में आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों में आरक्षण लागू किए जाने के विवादों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कल लोकसंवाद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने न केवल निजी क्षेत्रों में आरक्षण की वकालत की, बल्कि यह भी समझाया कि आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों में आरक्षण क्यों दिया गया।
मेरी राय है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अभी तो इसके बारे में संसद ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो वो अपनी जगह पर इसलिए अभी तक वो डिबेट का विषय। आप जरा बेसिक चीज समझिए ना, उसका पेमेंट कौन कर रहा है? उसका पेमेंट तो गवर्नमेंट फंड से हो रहा है ना, तो द मोमेंट आप गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा, वरना ये काम, ये जो लीगल प्रोसीजर है उसके अनुरूप नहीं है।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी निजी क्षेत्र में आरक्षण का समर्थन किया है। दरअसल 1 नवंबर को नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया था कि सरकारी कामों में लगी निजी कंपनियों को कर्मचारी आरक्षण नियमावली के तहत रखने होंगे, जिसका पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर सहित कुछ भाजपा नेताओं ने विरोध किया था। इस फैसले पर सीपी ठाकुर का तंज था कि क्या अब सड़क पर चलने में भी आरक्षण लागू होगा। इस विरोध को निजी अधिकार बताते हुए बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि पार्टी बिहार सरकार के फैसले के साथ है।
पार्टी का ये विरोध नहीं है, ये व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति का अपना अपना बात रखने का अधिकार है, तो अपने अधिकार के स्वरूप अपने उन्होंने अपनी बात को रखा है।
अनुसूचित वर्ग से आने वाले रोशन कुमार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की जरूरत बताई तो सामान्य वर्ग के राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इससे प्रतिभा का पलायन होगा।
देखिए सरकारी नौकरी में तो खाली मिलता नहीं है सर, कितना आदमी पढ़ लिख के भी अभी प्राइवेट ही अपना काम कर रहा है, और अगर प्राइवेट काम में अगर आरक्षण सरकार द्वारा मिल जाता है तो बहुत ही बात बढ़िया है सर, प्राइवेट में अपना काम करेगा उसमें आरक्षण मिलेगा।
तो कि यदि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लगेगा तो बिहार से प्रतिभा का पलायन दूसरे राज्य में होगा, क्योंकि बैठा हुआ प्रतिभा कहीं नहीं रहता है। आपने नेशनल लेवल पर यदि रिजर्वेशन किया तो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ के लोग चले गए।
आरक्षण समाज से लेकर राजनीति तक तीखी बहस का मुद्दा बना हुआ है। दूसरी ओर यह कोई पहली बार नहीं कि नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की वकालत की हो, ऐसे में यह तो समय के साथ ही सामने आएगा कि अब की नीतीश की बात कितनी दूर तक जाती है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। मारे गए चरमपंथियों में जैश के प्रमुख मसूद अजहर का भांजा भी शामिल है। मारे गए चरमपंथियों से एक अमरीकी हथियार भी बरामद किया गया है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी मारा गया है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा ने कई लोगों से मुलाकात की है। माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा अगलर में सोमवार देर रात एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने चरमपंथी संगठन जैश मोहम्मद के 3 चरमपंथियों को मारने का दावा करते हुए बताया है कि जिन 3 चरमपंथियों को मुठभेड़ में मारा गया है उनमें जैश मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का बांजा तलहा रशीद के अलावा जैश के डिविजनल कमांडर महमूद भाई और एक स्थानीय चरमपंथी वसीम गनाई भी शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया है कि मारे गए चरमपंथियों के कब्जे से एक AK-47 राइफल, M4 कार्बाइन राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि मारे गए चरमपंथी हाल ही में एक पुलिस पार्टी पर हमला करने में भी शामिल थे। चरमपंथियों से M4 कार्बाइन राइफल बरामद करने पर सेना के GOC ने प्रेस सम्मेलन में बताया कि यह हथियार नाटो और पाकिस्तान की विशेष फोर्सेज इस्तेमाल करती है, जिसका साफ साफ मतलब है कि पाकिस्तानी सेना जैश मोहम्मद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। GOC BS राजीव। GOC बता रहे थे कि M4 कार्बाइन राइफल नाटो फोर्सेज और पाकिस्तान की विशेष फोर्सेज इस्तेमाल करती है, और जिसका साफ साफ मतलब है कि जैश और पाकिस्तान की सेना के दरमियान अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए कैसा तालमेल है। पुलिस के IG मुनीर खान ने प्रेस सम्मेलन में बताया कि वो पाकिस्तान से अपने शहरियों के शव लेने के लिए कहेंगे। मुनीर खान। गौरतलब है कि बीते 3 महीनों में जैश मोहम्मद के चरमपंथियों ने कश्मीर घाटी में कई बड़े हमले किए, जिनमें श्रीनगर और पुलवामा में 2 बड़े आत्मघाती हमले भी अंजाम दिए गए, जिन हमलों में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस ने हालिया दिनों में जानकारी देते हुए बताया था कि जैश मोहम्मद का एक ग्रोह सीमा पार कर कश्मीर में दाखिल हो गया था, जिनमें से 17 के करीब जैश के चरमपंथियों को अभी तक मुठभेड़ों में मारा गया है। हालांकि एक लंबे समय तक कश्मीर में जैश मोहम्मद की गतिविधियों का दायरा सिमट गया था, लेकिन बीते कुछ महीनों से जैश की गतिविधियों में एकदम तेजी आ गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने 6 महीने पहले चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है, जिस ऑपरेशन में अभी तक सिर्फ दक्षिणी कश्मीर में 76 चरमपंथियों को मारा गया है। मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में नियुक्त किए गए विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा अपने 5 दिनों के दौरे पर कश्मीर में हैं, जहां उन्होंने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और छात्र संगठनों से मुलाकातें की। दिनेश्वर शर्मा 3 दिनों तक कश्मीर में रहेंगे और 2 दिन जम्मू और लद्दाख का दौरा करेंगे। तहम कश्मीर की कई व्यापार संगठनों ने विशेष प्रतिनिधि से मिलने से इनकार किया है। कश्मीर के अलगाववादियों ने पहले ही विशेष प्रतिनिधि से बातचीत करने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पहले ही दिनेश्वर शर्मा को नियुक्त करने का स्वागत करते हुए कहा है कि बातचीत से ही सारी समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर शिया वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। बोर्ड का कहना है कि वो सभी पक्षकारों से मिलकर राम मंदिर के निर्माण पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है और आगामी 6 दिसंबर तक वो समझौते का मसौदा भी पेश कर देगा। लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद के प्रमुख पक्षकारों ने शिया वक्फ बोर्ड की इस सक्रियता पर ही सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि इस विवाद से शिया वक्फ बोर्ड का कुछ भी लेना देना नहीं है। समीर आत्मत मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो अयोध्या में राम मंदिर विवाद के समाधान के लिए सभी पक्षकारों से बातचीत के जरिए एक मसौदा तैयार कर रहा है। बोर्ड का ये भी दावा है कि वो इस मसौदे को आगामी 6 दिसंबर तक कोर्ट के सामने पेश कर देगा ताकि मसले का जल्द से जल्द समाधान निकल सके। बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बीबीसी को बताया,
मसौदा तैयार कर रहे हैं वो बातचीत के आधार पर होगा। हमारा पहले भी व्यू जो था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि विवादित स्थल जो है अयोध्या में जिसको लेकर झगड़ा है वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए और मुस्लिम आबादी में फैजाबाद और अयोध्या से दूर
जी
मस्जिद बननी चाहिए जहाँ मुसलमान रहते। इन चीज के ऊपर बात चल रही। अगर कि ये बातचीतें मैच्योर हो गई और दोनों पक्ष तैयार हो गए तो हम कोर्ट के सामने रख देंगे।
वसीम रिजवी पिछले कुछ समय से राम मंदिर बनाने के पक्ष में लगातार आवाज उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि उनका फॉर्मूला भी लगभग वही है जिसकी मांग हिंदू पक्षकार काफी समय से कर रहे हैं। वसीम रिजवी के मुताबिक पिछले दिनों इस संबंध में उनकी मुलाकात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से भी हुई थी, लेकिन विवाद से जुड़े पक्षकारों का कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड और खासकर वसीम रिजवी की पहल का कोई मायने नहीं है क्योंकि वो इस विवाद में कहीं है ही नहीं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाफर रिजवी कहते हैं,
शिया वक्फ बोर्ड से सही मानों में इस मामले से कोई मतलब ही नहीं है। उसमें तीन मुख्य पक्ष हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, निर्मोही अखाड़ा है और भगवान रामलला विराजमान है और बाकी कुछ अयोध्या के लोकल लोग हैं, तो जो भी मुकदमा है ये उन्हीं के बीच में है।
दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने साल 2010 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित हिस्से को तीन प्रमुख पक्षकारों में बांट दिया था। ये थे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान रामलला। पिछले दिनों शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि बाबरी मस्जिद शियाओं की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया था। बाबरी मस्जिद मामले में प्रमुख पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी भी शिया वक्फ बोर्ड की इस मामले में सक्रियता को खास तवज्जो नहीं देते।
ये बाबरी मस्जिद के कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ जो कुछ भी मस्जिद की देखरेख करने में या पैसा खर्चा करने में या मुकदमा लड़ने में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड देखता है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब है। ये मस्जिद सुन्नियों की है, सुन्नी इसमें देखरेख करते हैं, सुन्नी नमाज पढ़ते थे, सुन्नी मुतवल्ली है और सारे लोग सुन्नी है। वसीम रिजवी साहब तमाम घोटाले में फंसे हुए हैं इस वक्त, इसलिए उनको भगवान राम की याद आने लगी है अब कि हम जो है इस तरीके से बाबरी मस्जिद को जो है मंदिर बनाने की बात कहेंगे तो सरकार यहाँ योगी जी की है, मोदी जी की है, तो सरकार खुश हो जाएगी।
वसीम रिजवी का दावा है कि उन्होंने निर्मोही अखाड़े समेत अयोध्या के कई और संतों से भी इस बारे में मशविरा किया है, लेकिन संतों ने भी शिया वक्फ बोर्ड की इस पहल पर न तो कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही उनकी इस कोशिश को बहुत गंभीरता से लिया है। वहीं जानकारों का कहना है कि सच्चाई तो ये है कि ये पहल शिया समुदाय की ओर से नहीं बल्कि खासकर वसीम रिजवी की ओर से हो रही है, जो इकबाल अंसारी के मुताबिक सरकार को खुश करने के मकसद से।
राजस्थान में एक हिंदू युवक से शादी करने वाली मुस्लिम युवती को हाईकोर्ट ने उसकी मर्जी के मुताबिक अपने पति के पास भेज दिया है। युवती ने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। अदालत अब बुधवार को धर्मांतरण के मामले की सुनवाई करेगी। जयपुर से नारायण बारेट।
इस शादी में धर्म और आस्था के सवाल खड़े किए गए तो कानून के बिंदु भी थे। कोई हफ्ते भर की कानूनी लड़ाई, हंगामे और तनाव के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में दोनों पक्षों को सुना और फिर युवती पायल सिंघवी से उसकी रजा पूछी। युवती ने माँ बाप के घर जाने से इनकार कर दिया। उसके वकीलों ने कहा पायल ने फैज मोदी से निकाह किया है, अब वो आरिफा है। पायल उर्फ आरिफा ने अदालत से कहा कि वो ना तो नारी निकेतन जाना चाहती है ना ही परिजनों के साथ। अदालत की इस कार्रवाई के बारे में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास ने मीडिया को जानकारी दी।
कोर्ट के अंदर आज राज्य सरकार की ओर से हमारी तरफ से जवाब पेश किया गया और जवाब पेश करने के उपरांत फयाज के अधिवक्ता भी आज उपस्थित हुए। उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा और उन्हें एक दिन का समय दिया गया। यह प्रकरण वापस कल कोर्ट में लिस्टेड होगा। इस प्रकरण के अंदर राजस्थान धर्म स्वतंत्रता बिल 2008 का बिंदु है, उसको लेकर के भी हमने हमारा जवाब पेश किया। कल इस प्रकरण में इस बिंदु को लेकर भी इस पर चर्चा होगी। कोर्ट ने यह कह दिया कि ये लड़की जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र है। लड़की को बुला करके पूछा गया पायल सिंघवी को, पायल सिंघवी ने कहा मैं मेरे माँ बाप के यहाँ नहीं जाना चाहते, तो कोर्ट ने उसे फ्री कर दिया कि ये जहाँ जाना चाहे इसको पुलिस इमदाद के साथ इसको भेज दिया जाए, तो आज इसको भेज दिया गया।
अदालत ने पिछले हफ्ते ही उसे नारी निकेतन भेजा था। वो अदालत में हाजिर हुई तो बुरका नशी थी। अदालत परिसर में मौजूद युवती के माता पिता ने कहा उनकी बेटी को फंसाया लुभाया गया है।
हमारे को जानती नहीं है, जब 23 साल हमने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसको अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन फिर भी मेरी समझ के बाहर है वो कैसे हुआ। 25 तारीख तक मेरी बेटी मेरे घर में थी और उसने अप्रैल में धर्मांतरण करके शादी कर ली है, मेरी समझ के बाहर है। कोर्ट में इसीलिए आया हूँ कि दूसरे के बच्चों को अपने घर में रोका जाए, उसका कोई कानून बन जाए ताकि वो अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर धर्मांतरण नहीं कर सके। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है।
सुनवाई के बाद अदालत परिसर में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। वे फैज मौली के वकील महेश बोड़ा से भी उलझ गए और पुलिस को दखल करना पड़ा। अदालत ने धर्मांतरण कानून के बारे में सरकार से जानकारी मांगी है। सरकार का कहना था कि विधानसभा ने कोई 8 साल पहले यह विधेयक पारित कर दिया था, मगर यह दिल्ली में रुका हुआ है। किसी के लिए यह लव जिहाद का मुद्दा है तो कोई इसे मोहब्बत की दास्तान बताता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि यह दो दिलों पर छोड़ देना चाहिए, पर सवाल यह है क्या यह इतना आसान है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी खास किस्म की टोपी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये टोपी आमतौर से कई तरह के रंग बिरंगे फूलों की डिजाइन से सजी होती है, लेकिन पिछले कई वर्षों में ये टोपी राजनीति के रंगों में रंग गई है। अब लाल और हरे रंग की टोपियां अधिक चलन में हैं और इन रंगों से उनके राजनीतिक समर्थन का पता चलता है। शिमला से हमारे संवाददाता शकील अख्तर की रिपोर्ट।
एक विशेष रूप की रंग बिरंगी टोपी हिमाचल की पहचान बन गई है। जाड़े का मौसम आते ही हर कोई यहाँ टोपी में नजर आता है। शिमला की रत्ना नेगी बताती हैं,
ये हमारा सर का ताज है, बहुत पुराने रीति रिवाज चला हुआ है। जैसे शादी ब्याह हर फंक्शन में हम इसको पहनते हैं, जैसे कोई मेहमान आए तो हम टोपी देके उसका आदर करते हैं।
लेकिन यहाँ की टोपी अब राजनीतिक रंग में रंगती जा रही है। BJP की एक समर्थक राजेश्वरी शर्मा बताती हैं,
हम तो इससे समझते थे कि हम हिमाचली हैं, हम हिमाचली टोपी पहनते हैं, लेकिन एक बार ही राजा साहब ने इसका निरादर किया तो कि मुझे क्यों दी मेहरून टोपी, मुझे हरी टोपी चाहिए थी।
लाल टोपी का मतलब BJP और हरी टोपी का मतलब कांग्रेस का समर्थक। लेकिन ईश्वर दत्त कहते हैं कि इन रंगों पर किसी का वर्चस्व नहीं है।
ये कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, ये बुशहर स्टेट की टोपी है, ये ना कोई BJP की ना कांग्रेस की है, ठीक है ना जी। इसकी जो शुरू से पहचान है एक बुशहर स्टेट, वो उसकी जो लाल टोपी है वो भी बुशहर स्टेट की, एक ग्रीन ऐसे किन्नौर से ही है।
हिमाचल में 9 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोग अपने अपने समर्थन के अनुसार लाल या हरी टोपी पहने हुए मिलते हैं। कांग्रेस के समर्थक रवीश ठाकुर दत्ता का कहना है,
ये डिवाइड हो गई हमारी पार्टी, एक होगी रेड कैप होगी BJP की एंड हमारी ग्रीन कैप होगी कांग्रेस की।
एक नागरिक बालक राम के विचार में हरी और लाल टोपियों का चलन इस बात पर टिका हुआ है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है।
मतलब कांग्रेस का वो पार्टी आता है तो सभी लोग यहाँ पे कांग्रेस की टोपियाँ पहननी शुरू कर देते हैं। अभी आने वाले इलेक्शन में देखते हैं, हो सकता है BJP आ जाए, बाकी कुछ कह नहीं सकते। जनवरी से लोग फिर BJP की टोपी पहनना शुरू कर देंगे, चाहे वो कांग्रेस वाला भी हो, फिर क्रेज सा बन जाता है टोपी का कि भाई अब BJP की सरकार है तो BJP की टोपी पहननी चाहिए।
एक नवयुवक रविंदर सिंह का कहना है कि टोपी हिमाचल की पहचान है और इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।
सर ऐसा है, टोपी के ऊपर कोई राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना, टोपी तो हमारी एक शान है। जैसे सिरमौर का कोई मेहरून कलर की पहनता है या ग्रीन कलर की पहनता है, ये तो हमारी एक शान है, इसको हम पहन सकते हैं चाहे कैसी भी हो। टोपी के ऊपर कोई राजनीतिक इशू नहीं होना चाहिए।
चुनाव के दौरान हिमाचल में टोपी राजनीतिक झंडा बन गई है। लोग अलग अलग लाल या हरी टोपियों में नजर आते हैं, लेकिन एक बात तय है कि चुनाव में जो भी दल जीतेगा उसकी टोपी ज्यादा नजर आएगी। शकील अख्तर, BBC शिमला।
उधर तिरुवनंतपुरम से खबर है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच अभी तक बारिश की वजह से शुरू नहीं हो पाया है। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को पूरी तरह विफल बताया है, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी तारीफ की है।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान द्वारा यमन में विद्रोहियों को मिसाइल देने को उनके देश के खिलाफ युद्ध की हरकत माना जाएगा। तेहरान की जेल में बंद ब्रिटिश ईरानी मूल की महिला नाज़नीन ज़ाग़री रेडक्लिफ पर ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन की टिप्पणी को लेकर उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।